अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै चिदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दिरचण्डीवरं जड्डञ्जाकुजरोचिशङ्खजगतमपट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिनमोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेयं दामोदर। तवै वाष्मि न जीवामि त्वया विना इति दिव्यं राधे तं नयमानचरणं। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षे चित्ताश्च कामान्तरं गमद्य कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना विन्दे नमस्ते चरणाय। শ্লোক পর্যন্ত হয়েছিল রে সাত, ঠিক ঠিক। হমলোক সৌভাগ্যবান হি গুরু গৌরাঙ্গ কি কৃপা সে বৃন্দাবন গোকুল মহাবন মধুবন তালবন कुमुद वन और वृंदावनों के उपवनों और उधर में रामघाट बिहार वन चीरघाट गरुड़ गोविंद शेई और इसके साथ में और भी स्थान हैं जिनका दर्शन हम लोग करके परिक्रमा करके अब हम लोग गिरिराज गोवर्धन के चरणाश्रय लिए हैं। इस स्थान के संबंध में आप लोग जानते हैं वृंदावन की अपेक्षा भी राष्ट्रस्तरीय होने पर भी प्रेमामिताप आप्लावित यह स्थान वृंदावन की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। अभी आप लोग वृंदावन से आने के पथ में राव वहां पर श्रीमती राधिका जी अपने पिता जी के साथ में रहते थे। जिस समय कृष्ण नंद बाबा के साथ में छठी करा में रहते थे वहीं से राधा जी की कृष्ण के मिलन इत्यादि की लीलाएं गोवर्धन इत्यादि की लीलाएं राव से ही होती थी। यहीं पर पैठा है स्थान, हमारे संप्रदाय का एक विशेष स्थान है पैठा। राधा जी का सर्वश्रेष्ठत्व वहीं परिणत हुआ। कृष्ण ने चतुर्भुज धारण किया और सखियों को तो मोहित कर दिया, उनको प्रणाम करके वो चली गई। कृष्ण को देखा है तो वो तो चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे, और राधा जी जब खोजते खोजते आई तो वो भूल गए अपने को, और चार हाथ में से दो आंस भीतर उनके शरीर में बैठ गया, इसलिए वो राधा जी के वशीभूत हैं। ये हमारे संप्रदाय का विशेष स्थान है, राधा जी का स्थान है, यहाँ पर राधा जी सब समय कृष्ण राधा जी के वशीभूत हैं। और थोड़ी देर आए तो वो रसौली स्थान है, रसौली के अंतर्गत में चंद्र सरोवर है, आजकल पराशौली कहते हैं किंतु है रसौली। रूप गोस्वामी इत्यादि ने, जीव गोस्वामी ने रसौली लिखा है, आजकल पराशौली उसको कहते हैं। तो वहीं चंद्रशोर में ब्रह्मा की एक रात्रि चंद्र अपनी गति भूल गए, तस से मश नहीं हो सके, जैसे वृंदावन में धीर समीर, समीर सब समय चलता है किंतु वहां पर धीर स्थिर हो गया, ऐसे यहां पर ब्रह्मा के एक रात्रि पर्यंत चंद्र ही वहां पर स्थिर हो गए और रास दर्शन करने लगे, इसलिए इसका नाम हुआ चंद्र सरोवर। यहां ये हुआ था, वहीं पर रास लीला हुई थी, इसीलिए उसके निदर्शन के लिए, स्मृति के लिए बज्रनाथ जी ने वो चंद्र सरोवर खुदवा करके उसका नाम दे दिया। पासी में जमनावती स्थान है, छोड़कर के अडिग के पास से आए, अडिग भी तो शायद नहीं गया था परिकर, अडिग है, जमनावती है, यहां पर जमुना नदी बहती थी, उसका अभी भी चिन्ह है गिरिराज गोवर्धन से पास में। यहीं से कृष्ण की गायें नंद बाबा इत्यादि के जो गोप लोग चरा रहे थे, यहीं गोवर्धन गिरिराज से दौड़ करके मधुबन में पहुंचे, और गोप लोग अपने बेटों पर बड़े क्रोधित हुए, मारने के लिए गए किंतु वहां देख करके अपने बेटों को भूल गए स्नेह में, और उसी में ब्रह्मा जी का एक दिन वो पूरा हो गया, एक वर्ष। फिर बलदेव जी ने कहा ये किसकी माया से मैं भी मोहित हो गया, तब ये सब स्थान से बहुत निकट, उस समय के लिए बहुत ही निकट, गैया चराने के लिए अधिकांश कृष्ण यहीं पर आते थे गोवर्धन पर, और यहाँ पर कुंज चारों तरफ में थे, राधा कुंड इसके दो नेत्र हैं, इसके संबंध में हम पीछे बतलाएंगे। आप अरण्य महाराज दृष्टि If any difficulty here, you can sit on chauki. Why you could not attend our classes tomorrow and today? Tell him.
so many of the many parts of Krishna Bhadravan, 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 Rohavan, Mahavan, Bhagavan, Bhagavan, Saravan, etc. Vidavan. Now from this place, Śrīla Gosvāmī Pāda explains Vidavan, Jāna, Uttara, Pāni, Rāvan, Tattva, Gopanāma. And now it's such an elevated spiritual place because Rāsa-līla is there. But Govardhana, Uddhava Pani, this Govardhana, in comparison to Vrindavan, is a superior spiritual abode. So, how do we figure out the today? If the devotees have visited by the down, in this place, we have the original Rāsa-līla. Krishna had disappeared from the devotees and they were searching for him here and there. So Krishna, because he's very mysterious, he manifested a full and form. And when gopis saw this, they gave pranam and went on their way. But when Radhika came, as Radhika was approaching, Krishna, he completely forgot his ordinance. And his two arms went inside. So two arms came inside after this confession, he told Paikagam. This place is very important for Gaudiya Vaishnavas, because this place is a testimony to the fact that Sri Krishna is controlled by the brain of Sri Radhika. Also, today you have been through Parsvali. Parsvali has been called by Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Rasvali. Here, Sri Krishna Chandra performed Rasa-līla, and the sun, the moon, sorry, Chandra, upon seeing this astonishing pastime, he became stunned. Usually the moon moves through the sky, but the moon became stunned and stayed in one position for an entire day of the Brahma, the one half of the Brahma. Just as in Dear Sunir in Vrindavan, where Rāsa-līla was being performed, the wind became stunned and its flow was checked. So in the same way, the ecstatic pastime of Rāsa-līla at Chandra Sarovar, the moon became stunned. So when Vajrana came here, he excavated this kund and called it Chandra Sarovar to commemorate this pastime. Great was by is the place where once the Nandagava and the cattle men, they were grazing cows on the top of Govardhan. And the Krishna and the cowboys were grazing cows at the bottom of the valley. But what happened? Even though these cows were somewhat older, the cows, they came running after them with so much attraction and affection for them. And the cattle men didn't try to stop the cows, but they could not. And they were so angry, but when they saw their children, the cow boys at the bottom, they also became overwhelmed with affection and forgot everything. Why? Because all these calves and these boys, they were all Krishna. This pastime took place during the Brahma Vimala Lila. And Krishna became all the cow, calves, and the boys. And therefore, no one could understand why they were feeling such extraordinary affection for them. Only Bhagavan could understand them.
मनस शिक्षा का आठवां श्लोक यथा दुष्टत्वं मे दवयति षठस्यापि कृपया यथा मह्यं प्रेमामृतमपि ददाति उज्ज्वलं वसौ यथा गंधर्वा भजन विधये प्रेरयति मां तथा गोष्ठे क्वाक्वा गिरिधर्मिह त्वं भज मनः। साधु संघ में हरि कथा श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से वे हृदय में शक्ति संचार करते हैं, जिससे हृदय की दुष्टता, काम, अनर्थ इत्यादि दूर होते हैं तथा सर्वार्थ की सिद्धि होती है। सर्वार्थ माने क्या? राधा दास्य तक सिद्धि होती है। किंतु ऐसा साधु संग स्वजाति स्निग्धा आशय रसिक तत्वज्ञ वैष्णव का संग सहज ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे मन, मैं ब्रज में अतिशय दंड और काकुति सहित गिरिधारी कृष्ण का उसी प्रकार से भजन करो जैसे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ सठ की सठता को दूर कर अपना परम उज्जवल प्रेमामृत प्रदान करें और श्रीमती राधिका जी की भजन की प्रेरणा दें। यहां पर दैन्य काकुति, कक्वा इत्यादि करें काकुति, विनती दीनहीन हो करके प्रार्थना, मैं नितांत असहाय दीनहीन व्यक्ति हूं, ये हृदय में समझे। विशेष करके साधु संग रूपी सहाय नहीं है, इस भावना के साथ में प्रार्थना करो। हम क्यों करें? हम लोग तो जानते हैं, हरि नाम करते हैं, हरि कथा बोलते हैं, विद्वान हैं। अरे रूप गोस्वामी तुम्हारे गुरु के गुरु रूप गोस्वामी ही ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं, तो तुमको भी जरूर करना चाहिए। अभिमान छोड़ो, रूप गोस्वामी ने कैसे प्रार्थना किया? वृंदावने बिहरी तोरी हकेली कुंजे मत्त दीप कैरव कौतुक विभ्रमेण संदर्शयस्य युवयोर वदनारविंदम गंधम विदे मई देवी कृपां प्रसीद। हा देवी काकू वर गद गदयाद वाचा जाके पत्त भूमि दंडवत उद्भट अस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निज गणे गणनं विधे श्यामे रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहि सम जगज्जनस्य श्यामस्य वामभुज बद्धतं कदाहं तामिन्दिरे दीर्घरूपवरं भजामि तं प्रच्छदेन मुदिरच्छ विना पिधाय मञ्जीरमुक्तचरणं च विधाय कुञ्जे भजन्तनयेन विराजमाने नक्तं कदा प्रमुतां कुंजे प्रसूनकुल कल्पित केली तल्पे संबीष्ट यो मधुर नर्म विलास भाव लोकत्रयाभरणयो शरणं भुजानि संवाहयस्यति कदा युवजोर्जनु तत्कुन्दरोदस विलास परिश्रमेण श्वेताम्बुशम्भुवदनाम्बरूहसी वृंदावनेश्वरी तरमूलभाजौ संवीयामि चमरी लीनानि कुञ्जकहरे भवतीं मुकुन्दे चित्रैव सूचितवती सुचिराक्षिणा भुग्ना भ्रुवं नरचयेति मिषानुजातम् अग्रे भजन्दतनयस्य कदा युद्ध के कौतुके ब्रजराज सिंहो जीतर कबिलाजमान कदा भवित जगोपुष्ट विश्वान कुमारी काया संप्रार्थना तकम पठती प्रपन्न प्रार्थना कर रहे हैं हे देवी राजगुरु, आप दोनों राधा और कृष्ण मत हस्ती के समान कौतुक विलास पूर्वक इस वृंदावन में सर्वत्र विहार करते हो, अतो हे गांधर्वी के आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप कृपा कर दोनों के जुगल मुखार बिंद का दर्शन कराएं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं हे देवी गांधर्वी के, मैं बड़ा ही कातर और दुखी हूं, मैं पृथ्वी पर दंड पर दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर कातरता पूर्वक गदगद वाणी से आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूं। मैं अयोग्य हूं, मैं जानता हूं, अज्ञानी हूं, फिर भी मैं तुम्हारा हूं, आप अपनी सेवकों में परिकरों में मेरी गणना करें। हे श्रीमती राजश्यामे, नारायण से भी परम सुंदर अपने सौंदर्य के द्वारा, कृष्ण नारायण से भी परम सुंदर है अपने सौंदर्य के द्वारा समस्त जगत जनों को मोहित करने वाले ये श्याम सुंदर अपनी वायुभुजा से आपको आलिंगित किए हुए हैं। उस समय लक्ष्मी जी से भी परम रूप होती, उनके आलिंगन पार्श में बद्ध मैं कब आपका आपकी सेवा करूंगी। हे देवी राधिके, आपकी सेविका बनकर मेघ जैसी नील रंग की नीलांबर रंग की ओढ़नी आपको ओढ़ाकर आपके चरण जुगलों से नूपुरों को उतार कर अभिसार के योग्य वेशभूषा में सजाकर सब प्रकार से उत्कंठित और प्रसन्न चित्त आपका रात्रि काल में नंदनंदन सुशोभित निकुंज भवन में कब अभिसार कराऊंगी। देवी त्रिभुवन के भूषण रूप आप जुगल निकुंज में विविध प्रकार के पुष्पों से रचित कोमल सैया पर शयन करके जब विविध प्रकार के हास परिहासमय नर्म क्रीड़ा कर रहे होंगे, उस समय आपके चरणारविंदों की सेवा का शुभ अवसर मुझे कब मिलेगा। वृंदावनेश्वर स्मर विलास के परिश्रम से जब आपके जुगल के मुखार बिंद में पसीने के बूंदे मोती के भांति सुशोभित हो रहे होंगे, उस रूप में विश्राम करने के लिए जब अपने कुंड राधा कुंड के तट पर सुंदर कदम्ब वृक्ष की छाया में बैठे होंगे, उस अवस्था में मैं सेविका रूप में आप दोनों को कब रत्न दंड से सुशोभित चमर द्वारा बीजन कराऊंगी और चमर धुलाऊंगी। हे सुंदर लोचने राधिके, आप जब कौतुक बस निकुंज के किसी कुंज स्थान में छिप जाएंगी, तब कृष्ण को छिपने का पता लग जाने पर आपके समीप आ जाने पर आप मुझसे पूछेंगे क्यों रही रूपमंजरी, क्या तुमने मेरे छिपने का स्थान इनको बतला दिया। तब मैं उत्तर दूंगी नहीं नहीं मैंने नहीं बतलाया, चित्रा सखी ने बतलाया है, इसलिए आप मेरे ऊपर में भ्रुक्ति टेढ़ी न करें, मेरे ऊपर में क्रोध प्रकाश न करें, चित्रा के ऊपर में करें। इस प्रकार से मेरे ऊपर मिथ्या कोप करने वाली आपको देख करके मैं कृष्ण के सामने आपसे अन्य विनय कब करूंगी, मेरा ऐसा कब शुभ न हुआ। उस समय आप बागयुद्ध राधा जी के साथ में कृष्ण का बागयुद्ध हो रहा है और कीड़ा कौतुक में कृष्ण को पराजित कर आप जब हर्षित होंगी और सखियां आपको विजय लाश से ताली बजाकर आपको पक्ष समर्थन कर रही होंगी, आपके दर्प को अतिशय विकसित करने वाला होगा, तब अपनी स्वामी जी के विजय और लय से प्रफुल्लित हो, सखी आपकी जय हो, आपकी जय हो, राधा जी की जय हो, राधिका की जय हो, इस प्रकार स्तुति करेंगे। ऐसी स्थिति में आपका कब दर्शन करूंगा। जो कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शरणागत होकर विश्वभानंदिनी राधिका के इस प्रार्थना अष्टक का नियमित रूप से पाठ करता है, राधिका जी अपने प्रियतम कृष्ण के साथ प्रसन्न होकर उनके ऊपर में प्रचुर से प्रचुर कृपा करते हैं। Perhaps all know the meaning, nothing to. All Western devotees, they know the meaning. So what is the need of reading again? Law.
प्रकाश के देखी ना अच्छे और गाड़ी
ऊपर यू कैन सीट ओम प्रकाश चौकी पर बैठ जाओ, तुमको असुविधा होती है ऊपर
बैठे। Attaining the service of the Lotus Feet of Sri Radhika Radhika. But that type of sarasloka, which can be this benefit, is extremely rare and is not easily attained. Therefore, the devotee should pray according to this, the 8th sloka of Nanashiksha. Almighty mind, with utter humility and grace-driven words, just worship Guru Hare Krishna in Braj in such a way that he will become pleased with me. By his closest mercy, he will remove my wickedness, he will bestow the nectar of his supreme radiant frame, and he will confer upon me the inspiration to worship Srimati Radhika. Total voice. full of despair. Please be merciful for this ignorant person and accept me as one of your maid servants. O Shama, your former beautiful and lovely lady, when will I have the opportunity to serve you? When you are embraced by the left arm of your beloved Shamasunda, whose beauty eclipses that of Shiva and Narayan, and whose beauty captivates the entire nation. O Devi Radhika, when will I become your maidservant and dress you appropriately for your lover's rendezvous by removing apple glass from your lord's feet and covering your graceful limbs in a blue sari, the color of a fresh rain cloud? When will I lead you to the kunj in the middle of the night, when your heart is filled with rapture and anticipation to meet with your lover, Sri Nandananda? O Devi, you and Sri Krishna are the ornament of the three worlds. In the forest grove, when both of you recline on the soft bed of a beautiful variety of flowers and partaking amorous pastimes about the environment, when will I be blessed to serve you and your beloved lotus feet? Hey, Vrindavaneshwari, when the lotus faces of you and your beloved are decorated with drops of perspiration due to the labor of your transport, you sit in the shade of a beautiful banana tree on the bank of Radhakund in order to rest. At that time, when will I, as your maidservant, fan your bodies with a jeweled chamar? O beautiful eyes, Srimati Radhika, when you play for your hide in a concealed kunj, Sri Krishna will come to know of your whereabouts and appear before you. You will then question me, reproachfully. Hey, Rupamantri, did you disclose to Krishna where my hiding place was? Then I will answer, no, I said nothing. It was Chitrasakhi who told me. So please don't frown upon me. When will I be blessed to see you feigning such anger towards me? And when will I get the opportunity to appease you with sweet words right in the presence of Sri Krishna? Or when will that day come when, in a joking mood, you will defeat Sri Krishna in a battle of words? At that time, you become exceedingly jubilant and you exult in the pride of your oratory prowess. The Sakyas, being overjoyed with the victory of their Swami, praise you, cheering, Jai Radhe, Jai Radhe. Or when will I behold you in such a condition? Anyone who takes shelter of Sri Vishwamandini by regularly reciting this Sampratanastika with great faith and in an attitude of devotion will surely please her along with her beloved Sri Krishna and thus become the recipient of their profuse mercy.
यहाँ पर षठता बोला गया, मुझ मैं षठ हूँ। षठता ही बुद्ध जीवों की, बद्ध जीवों की कपटता है। शुद्ध जीव स्वाभाविक रूप में सरल होते हैं और विद्या का आश्रय करने के साथ ही साथ जीव षठ, दाम्भी, प्रतिष्ठा लोलुप, कपटी, दुराचारी होकर भगवत तत्व से बहुत दूर हो जाते हैं। वे जीव साधु संघ के प्रभाव से जब अपने को तृणादपि सुनोच समझते हैं और दूसरों को यथा योग्य सम्मान देने लगते हैं और हरि का आश्रय ग्रहण करते हैं, हरि नाम का, तभी कृष्ण उनके प्रिय भक्त उन पर कृपा करते हैं और वे दुर्लक्षित कृष्ण प्रेम को दे सकते हैं। उज्ज्वल प्रेमामृत, उज्ज्वल का तात्पर्य उन्नत उज्ज्वल रस श्रृंगार रस से है। श्रृंगार रस का नाम ही मधुर रस भी है। रूप गोस्वामी रस के संबंध में बतलाते हैं, मुख्य रसेषु पुराज संक्षेपेण उदितो पति रहस्यत्वात् पृथगेव भक्ति रसराट स विस्तारेण उच्यते मधुर वक्षमाणे विभावाद्वै स्वाद्दत्तं मधुरा रति नीता भक्ति रस प्रोक्तो मधुराख्यो मनीषिभिः। भक्तिरसामी सिंधु ग्रंथ सब लोगों के लिए है, जो कोई भी भक्ति चाहते हैं किसी भी रस में, दशरथ सख्य बासल इत्यादि में। दास शांत, दास सख्य बासल और मधुर पांचों रसों का वर्णन भक्तिरसामृत रूप में किया। करने पर भी औरों का तो विस्तृत रूप में वर्णन किया, किंतु मधुर रस उन्नत उज्जवल रस का वर्णन नहीं किया, उसमें इंगित दे दिया और उसको दूसरी ग्रंथ में उज्जवल लीन मणि ग्रंथ में उसका वर्णन किया। क्यों किया? मधुर रस भक्ति रस राज है, शांत आदि दूसरों भक्तों के लिए अनुपयोगी है। बधि भक्ति बधि मार्ग में प्रगाढ़ आसक्ति वाले चित्त वाले साधकों के लिए सुगोप्य और दुरूह है, दुरूह है। अन्य रसों के साथ में इसका एकत्र वर्णन करना उचित नहीं होगा। विशेष कहते दुरू है जो जिनका संस्कार ऐसा नहीं है, वो इसके प्रति लोभ होने पर भी संस्कार नहीं रहने के कारण उचित रूप में विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी मिला करके रस रूप में इसका चिंतन नहीं कर पाते, इसलिए वो दुरूह है। रागमार्गीय भक्तों में वैधि भक्ति वाले भी भक्त रसामृत सिंधु का अनुशीलन कर सकते हैं, किंतु केवल मात्र मधुर रस के लिए ही रस साधन के लिए उपयोगी हो, इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने उज्जवल नील ग्रंथ में विस्तार पूर्वक इस रस का वर्णन किया। विशेष करके विभाव अनुभव शक्ति और व्यभिचारी इत्यादि रसों को भावों को किसको कितने परिमाण में मिला करके रस बनता है, पानी कितना, चीनी कितना, नींबू रस कितना, कपूर कितना, मान लें कि थोड़ा सा रस हो उसमें कपूर 1 किलो डाल दिया तो क्या होगा, कड़वा हो जाए। इसलिए उचित रूप में यह सब बतलाया गया और विशेष करके हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस चीज को बतलाया है किस रूप में कैसे लिया जाएगा तो होगा, किंतु बिना गुरु के ये सब चीजें नहीं समझ में आएगी। श्रील प्रभुपाद निरक्षर बाबा जी के पास में क्यों गए? इतने बड़े भारी विद्वान हो करके एक निरक्षर बाबा जी के पास में गए क्यों? ऐसी प्रार्थनाएं करते थे, राधे राधे उठाए गो प्रेममयी राधे, और भाव में भी विवर हो करके। पंडित समाज यहां कहां से लाएगा, भक्त ही वो स्कूल कॉलेज में पढ़े किसी भागवत व्यक्ति के पास भी पढ़े कहां से आएगा। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद ने उसको सब उसके लिए सुलभ किया है, और हमारे दास गोस्वामी जी ने उसकी मात्रा बतला करके कैसे उसको किया जाता है ये भी बतलाया, तभी बिना गुरु कृपा के उनके बातों को भी समझाना नहीं जा सकता है, यदि अनुभवी न हो, गुरु भी अनुभवी हो, रसिक हो और इन चीजों का अनुभव से हो तो शांत दास सख वात्सल्य में जो रति स्थायी भाव होती है, इनमें किसी में शांत, किसी में दास, किसी में सख, किसी में वात्सल्य, ये रतियां स्थायी होती है। उसको कहते हैं जो सबको मिला करके उनमें तरंगे उत्पन्न करा करके अपने स्थिर रहे। ये जैसे यशोदा मैया का वात्सल्य रति स्थाई भाव, उसमें विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी, ये चार भाव मिलकर रसता को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मधुर रस में भी जानना चाहिए, मधुर रस में कृष्ण विषय अवलंबन है। कृष्ण बल्लभा गोपिकाए एकमात्र आश्रय अवलंबन है, उनके गुण परस्पर के उद्दीपन है। लीला विलास के समय श्री कृष्ण बल्लभाओं और स्वयं कृष्ण में भी समय समय पर अष्ट सात्विक भाव 33 प्रकार के व्यभिचारी समय उदित होकर रस समुद्र को स्थित करते हैं, तरंगायित करते हैं। साधन भक्ति भाव भक्ति के रूप में परिणित होते ही स्थाई भाव प्रकट होता है। जब रति उत्पन्न होगी, भाव उत्पन्न होता है, शुद्ध सत्व होगा, तब स्थाई भाव उस समय में कुछ होगा। विभाव अनुभाव आदि के संयोग से रस रूपता प्राप्त होने पर प्रेमा भक्ति होती है, इसी को भक्ति रस कहा गया। कृष्ण की वृंदावन लीला और ब्रजमंडल में प्रियतमा गोपियों के साथ में होने वाली सारी लीलाएं इस रस के उदाहरण। भागवत इत्यादि में हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों में जो कुछ भी बतलाए गए हैं वो सब रस के उदाहरण हैं। सौभाग्य से इस मधुर रस के प्रति जिसका लोभ होता है, गोपियों के अनुगत होकर के पूर्वोक्त प्रकार से कातरता पूर्वक गदगद वाणी से प्रार्थना करते करते शिव प्रार्थना करते हैं और तब राधिका जी के कृपा होती है, तब ह्लादनी शक्ति की किरणें हृदय में प्रवेश कर रस को प्रकट कर देती है। इसके अतिरिक्त मधुर रस की प्राप्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं।
More insignificant than the blade of grass. when by the influence of Sadhu Sangha, they start to give respect to others according to their appropriate positions. And in this mood, when they take complete shelter of Harinam, then Krishna and his beloved associates bestow mercy upon the living entity, and they attain the very rare quality of Krishna prayer. So in this verse, the Raghavan Krishna Swami says, the next good one of us all, pray on Krishna. Oh, please bestow upon me the nectar of Gurdwara prayer. So now, in the commentary, Srila Bhaktivinoda Thakur explains the meaning of Gurdwara prayer. The word Gurdwara, which means blazing or radiant, it refers to Srikarasa, the romantic mood. This is also known as Madhurya Rasa. In Gurdwara Nilamani, in the chapter of Nayaka Vedi Prakara, Varieties of Heroes, Srila Rupa Goswami Pada has described this Madhurya Rasa. He said, the five primary mellows of Santa Dasa Sakya Vatsala and Madhurya have been discussed in Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. Madhurya Rasa is the prominent rasa among all the other varieties. It is the foremost. And all the other four rasas have been described elaborately in Bhakti Rasamrita Sindhu, but Madhurya Rasa has only been hinted at. Why? Because Srila Rupa Goswami Pada, then after Bhakti Rasamrita Sindhu, in his Grantha Gurdwara Nilamani, he has elaborately described Gurdwara Rasa, because a separate treatise was required to discuss this last subject. Madhurya Rasa has been discussed separately because it is also very confidential, very mysterious and difficult to understand. So there are three reasons why Madhurya Rasa is extremely unintelligible for general devotees. First of all, those devotees who render service in the other four rasas, they are not eligible to understand Madhurya Rasa. It is only to be understood by those who have taken complete shelter of this one rasa exclusively. The second reason, among those who have taken exclusive shelter of Madhurya Rasa, it is very rare that any of them can relish this rasa. Why? Because they are not expert in tasting it, because they do not have appropriate samskars. It means that to taste this rasa, one, at the time of bhavana, meditation, you will have to realize sthayibhav, vibhav, anubhav, sarvatibhav, vyapacharibhav, and mix them together in the correct proportions so that transcendental rasa will manifest. So because most devotees are bereft of the appropriate samskaras, they are not experts at mixing together the rasa samagri, the five bhavs which are the ingredients of rasa, and therefore they cannot relish that rasa. Thirdly, Madhurya Rasa is attained by following Raga Marga. So those sadhaks whose hearts are affected by material desire, they are unqualified. And those who are attracted by or obsessed with Vaidhi Bhakti, they also cannot attain this rasa, because it cannot be attained by following Vaidhi Bhakti, only by following purely Raghavendra Bhakti. So, because the types of devotees who are obstructed by these three types of disqualification are not eligible to understand Madhurya Rasa. Therefore, it's inappropriate to glorify Madhurya Rasa in their presence. And therefore, Srila Rupa Goswami has not elaborated on Madhurya Rasa in his Bhaktivinoda Samrita Sindhu.
শেষ করে দিন, সস্তা হয়ে গেছে, লোক এগারোটা দশটা সময় প্রসাদ পেয়েছে, তার আরতি হবে, এই হবে,
ঠিক আছে, ঠিক আছে,
আর আপনারাও দেখবেন,
আমি দেখছি,
তাহলে আপনার বোধহয় 10:30 বাজবে,
বসো বসো
বসো, কি সময় দেখতে হবে না,
কমপ্লিট.
সো another reason why this is recommended is that and he took shelter at the lotus feet of Srila Gopi Shodas Babi Maharaj, who was illiterate. Why? Because Srila Gopi Shodas Babi Maharaj, Vipar Nandakarna Sambode, he was always drowning in the endless ocean of loving separation from the lotus feet of Srimati Radhika. And this is what Srila Bhakti Siddhanta Sarvati Thakur wanted to receive. If one simply becomes learned, he will not be able to realize his good. Where will it come from? It will come by the blessing and mercy of a rasik, Rupa Duga, Tantra Vaishnava, who himself has realized all these things. If one's guru, Dikshi Guru, Shikshi Guru, they have not realized this Madhurya Rasa, they will not be able to bless their Anuragjan, those who are under their guidance, to realize this Madhurya Rasa also. Rati is called Sthayi Bhav. It's a permanent mood. And it is of five types. Ratsya, Satya, Vatsalya, and Madhurya. For example, Ratsalya Rati is the Sthayi Bhav of Madhurya Rasa. So when you show that, her Rati is Ratsalya Rati. And this is the Sthayi Bhav, or the permanent sentiment, which is the basis of Madhurya Rasa. When this combines with the four other elements or ingredients of rasa, rasa samagri, namely jiva, anubhav, satyabhav, and vyabhacharibhav, when they are integrated together, this is called bhakti rasa. So, Srila Gurudev explained the individual components of rasa, rasa samagri. After sthayibhav, there is vibhav. Vibhav means that which stimulates rati. It intensifies rati, so it's called vibhav. This vibhav is divided into two parts, alamban and udipana. Alamban is divided into two parts. The object of love, that is called vishayalamban, the object of love, Sri Krishna is love. And ashrayalamban, the abodes of love. For example, in Madhurya Rasa, the abodes of love are the gopis themselves. The qualities of Krishna and the gopis are udipana, or stimulants, and udipana is also included in vibhav. So, when Krishna and the gopis perform their pastimes, they become permeated with sattvic bhavs, eight types of bodily transformations. And also, they experience 33 vyabhachari bhavs, or transitory assisting emotions, which rise and fall like waves in the ocean of the sthayi bhav. So, when a devotee is practicing sadhana bhakti, he attains bhava bhakti. At that time, his own sthayi bhav becomes manifest. Gradually, he becomes qualified to proceed in his meditation the other components of rasa. And when they mix together, then he takes the shape of rasa. The appearance of rust signifies the appearance of drain. So the pastimes of Sri Krishna in Vrindavan, performed in the Nanda Gopis, Ram Prajananda, and which have been described by Śrīla Rūpa Goswami, Śrīla Raghunatha Goswami, Śrīla Viśvanatha Thakur, and other acharyas are examples of this rasa. So those who by great fortune they awaken, agree to take the Guru rasa, they must follow the moods of the gopis in Vrindavan. Even though they may attain greed, if a person does not have the appropriate sanskars, he still cannot attain this bhakti rasa. So gradually, by mercy of Guru Vaishnava, he should follow the practice of bhakti and pray again and again with intense longing and feeling anguish in his heart, feeling deprived and bereft of this supreme nectar. And if you go on doing sadhana bhajan in this way, when Srimati Radhika bestows her mercy on such a person, then the rays of Ladini Shakti will flood that person's heart and bring about the appearance of rasa. This is the method to attain rasa. There is no other way.
Jab. रागात्मिक ब्रजवासियों के भावों को देखते सुनते श्रवण करते 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 यदि किसी सखी के प्रति या लोभ उत्पन्न हो जाए, वैसे ही मुझको सेवा मिले लोभमयी, तो उनकी कैसे सेवा करें? उनकी अनुचरी किसी रूपमंजरी इत्यादि का चरणाश्रय करके सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी, सखियों की कृपा से ह्लादिनी शक्ति का उनमें संचार होगा और तब भी उनको प्रेम मैया सेवा मिलेगी। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जो लोग इसे अनभिज्ञ है उनका संग नहीं करें, स्वजाति व्यक्तियों का ही संग करें। विशेष करके रूपमंजरी के भावों से जो अनुप्राणित है वही लोग इस विषय में प्रवेश करें, नहीं तो अनर्थ हो। आज यहीं तक रहे। बोल दो, बस इतना ही, थोड़ा सा। आप आज बोला नहीं, बहुत देरी हो। They are all hungry, right? Are you hungry? So much? What? Very soon? Sound is not coming.
Oh,
Prabhu, कहाँ गए? कब होगा? कब? चार पांच दिन में हो जाएगा?
This one doesn't work, so let's turn the other one. You
just now they are managing.
Sometimes the jiva, who is very insignificant, he follows the sadhana of jnana and he becomes absorbing Brahmananda or Atmananda. But the experience of realizing the soul is distinct from matter is very insignificant in comparison to Brahmananda. That is the highest joy which comes from service, devotional service, praying Seva Ananda. The joy of being liberated from the bodily conception of life is like the light of a firefly compared to the sunlight of the happiness of praying seva. As long as the tiny jiva remains unafraid to pray Radha, he thinks that Radha is something valuable. Only when he gets the shelter of the Adini Shakti can the insignificant Atma attain Paramananda. So the method to receive the Adini Shakti is explained here. When the living entity hears about the moods of the eternal residents of Braja, who are Raghadnik Jana, eternal associates, then a greed may awaken his heart to attain a mood which is similar to death. When this greed occurs, what should he do? He should take complete shelter of the lotus feet of one of the sakis of Srimati Radhika, one of the sakis or one of our mantras, and he should serve that mantra with great humility.
Okay. এখানে হরি কথা করে সাতটার সময় যাবে নাকি পূর্বে যাবে? হ্যাঁ, পূর্বে এমনি তো যাওয়া হয়,
সকাল ছটার সময় যাওয়া হয় প্রতিবারই।
The more the Ladini Shakti is transmitted into one's heart, and this will gradually become Nitya Prema Loving Seva, eternal loving service of Radha and Krishna.
Kalke.
In the Rupa's Holy Father has described this Madhurya Rasa. He said, the five primary mellows of Santa Dasa Satyavata and Anandra have been discussed in Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. Madhurya Rasa is the prominent rasa among all the other varieties. It is the foremost. And all the other four rasas have been described elaborately in Bhakti Rasamrita Sindhu, but Madhurya Rasa has only been hinted at. Why? Because Sri Rupa Goswami Pada, then after Bhakti Samrita Sindhu, in his Grantha Kuchwala Nilamani, he is elaborately described in Kuchwala Rasa. Because a separate treatise was required to discuss this last subject. Madhurya Rasa has been discussed separately because it is also very confidential, very mysterious and difficult to understand. So there are three reasons why Madhurya Rasa is extremely unintelligible for general devotees. First of all, those devotees who render service in the other four rasas, they are not eligible to understand Madhurya Rasa. It is only to be understood by those who have taken complete shelter of this one rasa exclusively. The second reason, among those who have taken exclusive shelter of the Madhurya Rasa, it is very rare that any of them can relish this rasa. Why? Because they are not expert in tasting it, because they do not have appropriate samskars. It means that to taste this rasa, one, at the time of bhavana, meditation, you will have to realize sthayi bhav, vibhav, anubhav, sattvic bhav, vyavachari bhav, and mix them together in the correct proportions so that transcendental rasa will manifest. So because most devotees are bereft of the appropriate sanskars, they are not experts at mixing together the rasa samagri, the five bhavs which are the ingredients of rasa, and therefore they cannot by following Radha Marg. So those sadhaks whose hearts are affected by material desire, they are unqualified. And those who are attracted by or obsessed with Vaidhi Bhakti, they also cannot attain this rasa, because it cannot be attained by following Vaidhi Bhakti, only by following purely Radha Bhakti. So, because the types of devotees who are obstructed by these three types of disqualification are not eligible to understand Madhurya Rasa, therefore it's inappropriate to glorify Madhurya Rasa in their presence. And therefore, Srila Rupa Goswami has not elaborated on Madhurya Rasa in his Bhaktivinoda Samrita Sindhu.
শেষ করে দিন, স্বাস্থ্য হয়ে গেছে, লোক এগারোটা দশটা সময় প্রসাদ পেয়েছে, আরতি হবে, এই হবে,
ঠিক আছে, ঠিক
আর আপনারা দেখবেন সাড়ে দশটা বাজবে, বসো কি সময় দেখতে হবে না,
কমপ্লিট.
সকলের সামনে রাখ, রাখেন নিজে মাথা চুলন.
Or transitory assisting emotions, which rise and fall like waves in the ocean of the Daiva. So, when the devotee is practicing sadhana bhakti, he attains bhava bhakti. At that time, his own Daiva becomes manifest. Gradually, he becomes qualified to perceive in his meditation the other components of rasa, and when they mix together, then he takes the shape of rasa. The appearance of rasa signifies the appearance of brain. So the pastimes of Sri Krishna in Vrindavan, performed in the Nanda Gopis, Rav Rajananda, and which have been described by Śrīla Rūpa Goswami, Śrīla Raghunatha Goswami, Śrīla Vishwanatha Thakura, and other acharyas are examples of this rasa. So those who by great fortune, they are agreed to take the Guru rasa, they must follow the moods of the gopis in Vrindavan. Even though they may attain greed, if a person does not have the appropriate sanskars, he still cannot attain this bhakti rasa. So gradually, my blessed Guru Vaishnava, you should follow the practice of bhakti and pray again and again with intense longing and feeling anguish in his heart, feeling deprived and bereft of this supreme nectar. And if you go into his sadhana pradhan in this way, when Srimati Radhika bestows her mercy on such a person, then the rays of the Vini Shakti will flood that person's heart and bring about the appearance of rasa. This is the method to attain rasa. There is no other way.
Jab. रागात्मिक ब्रजवासियों के भावों को देखते सुनते श्रवण करते 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 यदि किसी सखी के प्रति या लोभ उत्पन्न हो जाए, वैसे ही मुझको सेवा मिले लोभमयी, तो उनकी कैसे सेवा करें? उनकी अनुचरी किसी रूपमंजरी इत्यादि का चरणाश्रय करके सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी, सखियों की कृपा से हलादनी शक्ति का उनमें संचार होगा और तब भी उनको प्रेम मैया सेवा मिलेगी। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जो लोग इसे अनभिज्ञ है उनका संग नहीं करें, स्वजाति व्यक्तियों का ही संग करें। विशेष करके रूपमंजरी के भावों से जो अनुप्राणित है वही लोग इस विषय में प्रवेश करें, नहीं तो अनर्थ हो। आज यहीं तक रहे। बोल दो, बस इतना ही, थोड़ा सा। आप आज बोला नहीं, बहुत देरी हो। They are all hungry, perhaps. Are you hungry? So much? Go on. Very soon. Sound is not coming. Oh, Prabhu, कहाँ गए? कब होगा? कब? चार पांच दिन में हो जाएगा?
This one doesn't work, so they're turning the other one.
Just now they are managing.
Sometimes the jiva, who is very significant, follows the sadhana of jnana and he becomes a yogin Brahmananda, or Atmananda. But the experience of realizing that the soul is distinct from matter is very insignificant in comparison to Paramananda. That is the highest joy which comes from service, devotional service, praying Seva Ananda. The joy of being liberated from the body conception of life is like the light of a firefly compared to the sunlight of the happiness of praying Seva. As long as the tiny jiva remains unliberated with praying Ananda, he thinks that Ramananda is something valuable. Only when he gets the shelter of that deity shakti can the insignificant atma attain Paramananda. So the method to receive that deity shakti is explained here. When the living entity hears about the moods of the eternal residents of Raja, who are Varadnik Jana, son of Sosias, then a greed may awaken his heart to attain a mood which is similar to theirs. When this greed occurs, what should he do? He should take complete shelter of the lotus feet of one of the sakis of Srimati Radhika, one of the sakis or one of our mantris, and he should serve that mantri with great humility.
এখানে হরিকথা করে সাতটার সময় যাবে নাকি পূর্বে যাবে?
The more that the Dini Shakti is transmitted into one's heart. And this will gradually become Nitya Prema Loving Seva, eternal loving service of Radha and Krishna.
Kalke.